एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नाम की जिसे सुनते ही शायद चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, मार्क ट्वेन।
हाँ बिल्कुल, टॉम सॉयर, हकबरी फिन, बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं।
सही कहा, पर मार्क ट्वेन, जिनका असली नाम सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस था, वो सिर्फ कहानियों और हास्य तक सीमित नहीं थे। उनकी जिंदगी काफी उतार चढ़ाव भरी थी।
बिल्कुल, और आज हम रॉन चरणों की लिखी उनकी जीवनी के जरिए उनकी कहानी की गहराई में उतरेंगे।
तो सोचिए, एक ऐसा लेखक जो अपनी हाजिर जवाबी, अपने व्यंग के लिए मशहूर हो, लेकिन जिसकी अपनी निजी जिंदगी में त्रासदियां हों, पैसे की तंगी हो, और मतलब कई तरह की विरोधाभास हों।
हाँ, और ये सिर्फ एक लेखक की कहानी नहीं है, ये उस अमेरिका की कहानी भी है जो बदल रहा था। गृह युद्ध के बाद का अमेरिका, औद्योगिक क्रांति, अपनी पहचान खोजता हुआ।
और वो हेली के धूमकेतु वाली बात कि वो उसी के साथ आए और उसी के साथ गए।
हाँ, ये बात चरणों भी बताते हैं। ये उनके असाधारण जीवन का एक प्रतीक सा बन गया, और उनकी कहानी आज भी जरूरी है ना, क्योंकि ये व्यक्तिगत संघर्ष, नैतिक उलझने और अमेरिकी चरित्र की जटिलताओं को दिखाती है।
तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सैमुअल क्लेमेंस, जन्म 1835 में मिसूरी के एक छोटे से गांव फ्लोरिडा में।
हाँ, लेकिन बचपन बीता हैनिबल में, मिसिसिपी नदी के किनारे, वही कस्बा जो उनकी कहानियों में जिंदा हो गया।
और शुरुआती जीवन कैसा था? सुना है आर्थिक हालात कुछ ठीक नहीं थे।
हाँ, उनके पिता जॉन मार्शल क्लेमेंस थे तो वकील और जज, पर पैसों के मामले में ज्यादा सफल नहीं रहे, और जब सैमुअल सिर्फ 12 साल के थे तभी उनकी मौत हो गई।
ओह, सिर्फ 12 साल की उम्र में?
जी, तो परिवार पर काफी मुश्किल आ गई। सैमुअल को स्कूल छोड़ना पड़ा और प्रिंटिंग प्रेस में काम सीखना पड़ा। चेरनो इस बात पे जोर देते हैं कि ये जो बचपन की गरीबी थी और पैसे को लेकर असुरक्षा की भावना, इसने उन पर गहरी छाप छोड़ी।
शायद इसीलिए वो जिंदगी भर पैसे और सफलता के पीछे रहे।
हाँ, कह सकते हैं। और हैनिबल का माहौल भी, वो भी बड़ा दिलचस्प था। मतलब एक तरफ तो नदी का खुलापन, रोमांच, दूसरी तरफ गुलामी की सच्चाई रोजमर्रा की।
उनके परिवार में भी?
हाँ, क्लेमेंस परिवार के पास भी गुलाम थे, और इस चीज ने जैसे बचपन से ही उनकी नैतिकता की समझ को बड़ा पेचीदा बना दिया। उन्होंने बचपन में मौतें भी देखी, और फिर भाई हेनरी की मौत, उसका अपराध बोध तो उन्हें जिंदगी भर रहा।
तो स्कूल तो छूट गया, पर सीखना जारी रहा।
पहले प्रिंटिंग प्रेस में।
हाँ,
शब्दों से जान पहचान वहीं हुई, और फिर आई मिसिसिपी नदी, वो उनकी असली यूनिवर्सिटी बनी कह सकते हैं।
22 साल की उम्र में पायलट बने, है ना? हॉरिस बिक्सबी से सीखा।
जी, और ये कोई आसान काम नहीं था। मिसिसिपी रिवर बोट पायलट बनना उस जमाने में मतलब शिखर का पेशा था।
अच्छा,
क्यों? अरे, नदी के हर मोड़, हर पेड़, पानी के बदलते रंग, सब कुछ याद रखना होता था। जबरदस्त याददाश्त चाहिए थी, तुरंत फैसले लेने की हिम्मत, और जिम्मेदारी तो थी ही। इसी अनुभव ने उन्हें उनका नाम दिया मार्क ट्वेन, मतलब 2 फैदम गहरा, यानी जहाज के लिए सुरक्षित पानी। और यहीं उन्होंने इंसानी फितरत को बहुत करीब से देखा। यह अनुभव उनके लेखन का आधार बना।
लेकिन फिर गृह युद्ध छिड़ गया और पायलट का करियर खत्म।
हाँ, सिविल वॉर शुरू होते ही नदी पर ट्रैफिक बंद हो गया, करियर अचानक खत्म। फिर वो पश्चिम की तरफ गए, निवादा,
चांदी खोजने।
हाँ, भाई ओरियन के साथ गए थे। वो कोशिश तो फेल हुई, पर वो वर्जीनिया सिटी पहुंच गए और वहां पत्रकार बन गए।
और यहीं से लेखक मार्क ट्वेन का जन्म हुआ।
बिल्कुल, उनकी एक कहानी थी, द सेलिब्रेटेड जंपिंग फ्रॉग ऑफ कैलावरस काउंटी। वो इतनी चली के मतलब रातों रात वो मशहूर हो गए।
अच्छा, और फिर आई द इनोसेंस अब्रॉड, 1869 में यूरोप यात्रा वाली किताब।
हाँ, वो तो एक धमाका था। वो अमेरिका की पहली बेस्ट सेलिंग ट्रैवल बुक बनी। उनका अंदाज बिल्कुल नया था, अमेरिकी नजरिए से थोड़ी मस्खरी के साथ पुरानी दुनिया को देखना।
और इसी दौरान उनकी शादी भी हुई ओलिविया लैंगडन से।
जी, कहते हैं तस्वीर देखकर ही प्यार हो गया था। ओलिविया एक अमीर, पढ़े लिखे, संभ्रांत परिवार से थी। इस शादी ने ट्वेन को पूर्वी अमेरिका के साहित्यिक और सामाजिक दायरे में जगह दिलाई।
और फिर हार्टफोर्ड वाले साल आए कनेक्टिकट में, वो उनके सबसे अच्छे साल माने जाते हैं।
हाँ बिल्कुल, 1871 से 1891 तक वो उनकी रचनात्मकता का शिखर था। लीवी उनके जीवन में स्थिरता लाई, वो उनकी सबसे अच्छी दोस्त और संपादक भी थी।
और यही लिखी गई वो अमर किताबें, टॉम सॉयर, हकलबरी फिन।
जी, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, द प्रिंस एंड द पॉपर, लाइफ ऑन द मिसिसिपी, और हाँ, उनकी सबसे महान कृति
Adventures of Huckleberry Finn, 1884 में आई.
Huckleberry Finn, ये किताब आज भी कितनी पढ़ी जाती है और उतनी ही विवादास्पद भी है. ऐसा क्यों?
इसके कई कारण हैं. एक तो जैसा चारनो बताते हैं, ये उस वक्त की आम अमेरिकी बोलचाल की भाषा में लिखी गई थी. ये अपने आप में एक बड़ी क्रांतिकारी बात थी.
अच्छा, साहित्यिक भाषा से अलग.
हाँ बिल्कुल, उस समय गंभीर साहित्य ज्यादातर फॉर्मल भाषा में होता था. और दूसरी ज्यादा अहम बात, ये किताब बड़ी हिम्मत से अमेरिकी समाज की दुखती रग पर हाथ रखती है, नस्लवाद और गुलामी.
हक और जिम की कहानी.
हाँ, एक भागा हुआ गुलाम जिम और एक लड़का हक, उनकी दोस्ती के जरिए ट्वेन ने समाज के पाखंड और अन्याय पर तीखे सवाल उठाए. इसीलिए छपते ही इस पर बवाल मच गया, कई लाइब्रेरियों ने बैन कर दिया.
तो वो सिर्फ हंसाने वाले लेखक नहीं रहे, एक तरह से सामाजिक आलोचक बन गए.
बिल्कुल, एक प्यारे एंटरटेनर भी और एक खतरनाक आलोचक भी, दोनों पहचाने साथ साथ चलने लगी.
लेकिन फिर मुश्किलों का दौर आया, 1890 का दशक, आर्थिक संकट.
हाँ, वो हमेशा से अमीर बनना चाहते थे, शायद बचपन की गरीबी का असर था. और वो अक्सर नए नए आविष्कारों में पैसा लगाते थे. पेज टाइप सेटिंग मशीन नाम के एक आविष्कार में उनका सारा पैसा डूब गया. उनका अपना पब्लिशिंग हाउस भी फेल हो गया और नतीजा अमेरिका का सबसे मशहूर लेखक दिवालिया हो गया. ये उनके लिए सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं था, इज्जत का सवाल था.
इससे उभरे कैसे वो वर्ल्ड टूर वाली बात.
हाँ, कर्ज चुकाना था. वो चाहते तो कानून का सहारा लेके बच सकते थे, पर उन्होंने जिम्मेदारी ली. करीब 60 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया भर में लेक्चर देने का थका देने वाला टूर शुरू किया.
60 साल की उम्र में?
जी, चेरनो लिखते हैं कि ये उनके लिए अपमानजनक था, लेकिन जिस ईमानदारी से उन्होंने पाई पाई चुकाई, उससे उनकी इज्जत दुनिया में और बढ़ गई. इसमें उनके दोस्तों ने भी मदद की, जैसे हेनरी रॉजर्स.
लेकिन इसी मुश्किल वक्त में शायद सबसे बड़ा दुख आया, बेटी सूजी की मौत.
हाँ, वो उनके जीवन की सबसे भयानक त्रासदी थी. 1896 में वो लेक्चर टूर पे यूरोप में थे. और यहाँ हार्टफोर्ड में उनकी 24 साल की बेटी सूजी की मेनिनजाइटिस से अचानक मौत हो गई.
और वो उसके पास भी नहीं थे.
नहीं, इसका उन्हें गहरा सदमा लगा, अपराध बोध भी. फिर उनकी पत्नी लिवी, जो बीमार रहती थी, वो 1904 में गुजर गई. और फिर 1909 में, क्रिसमस से ठीक पहले, उनकी एक और बेटी जीन की मिर्गी के दौरे से मौत हो गई.
हे भगवान, एक के बाद एक.
हाँ, उन्होंने खुद कहा था कि उनका घर शोक का घर बन गया है.
इन सब त्रासदियों का उनके लेखन और सोच पर क्या असर पड़ा होगा?
बहुत गहरा. उनका नजरिया और भी ज्यादा निराशावादी हो गया, कड़वापन आ गया. उनका हास्य अब ज्यादा काला, व्यंग्य ज्यादा तीखा हो गया. उनकी बाद की रचनाओं जैसे द मिस्टीरियस स्ट्रेंजर में ये साफ दिखता है. वो अब सिर्फ समाज के पाखंड पर नहीं, बल्कि पूरी इंसानी नस्ल की कमजोरियों पर लिख रहे थे. साम्राज्यवाद के कट्टर विरोधी बन गए, खुलकर बोलने लगे.
और अंत भी वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने कहा था, हैली की धूमकेतु के साथ.
हाँ, 1910 में जब हैली का धूमकेतु वापस आया, तो वो दुनिया छोड़ गए. एक अजीब संयोग, लेकिन उनके अपने अंदाज का.
तो अगर हम उनके मूल दर्शन को समझें, चेरनो की किताब क्या कहती है, वो आशावाद से निराशावाद तक का सफर तो दिखता है, पर उनके अंदर क्या था जो उन्हें चलाता रहा?
देखिए, चेरनो उन्हें बहुत जटिल इंसान बताते हैं. उनका वो मशहूर जुमला है ना, शापित मानव जाति,
डैम्ड ह्यूमन रेस.
हाँ, वो असल में नफरत नहीं थी, वो इंसानी क्षमता और उसके असल काम, उसके बीच का जो फासला है, उसे देखकर पैदा हुई निराशा थी. वो मानते थे कि इंसान काफी हद तक अपनी परिस्थितियों, अपनी ट्रेनिंग, अपने स्वभाव का गुलाम है. मतलब नियतिवाद में उनका यकीन बढ़ गया था.
तो क्या वो मानते थे कि हमारे पास अपनी मर्जी है ही नहीं?
शायद वो ऐसा ही सोचते थे कि सच्ची आजाद मर्जी शायद एक वहम है.
ये तो काफी डार्क सोच है. फिर भी वो अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे, सामाजिक बुराइयों पर लिखते रहे.
यही तो विरोधाभास है, और शायद यही उनकी महानता भी. इस सोच के बावजूद उनमें न्याय और बराबरी का जबरदस्त जज्बा था. वो पाखंड बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, चाहे वो धर्म में हो, राजनीति में या समाज में.
धर्म को लेकर उनका नजरिया कैसे बदला?
वो परंपरागत ईसाई धर्म और उसके कर्मकांडों से दूर होते गए. संगठित धर्म के पाखंड की वो कड़ी आलोचना करते थे. धीरे धीरे वो एक तरह के मानवतावाद की तरफ बढ़े, जो अच्छे कर्म और व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर देता था.
और उनकी निजी प्रेरणाएं, पैसा, शोहरत?
चरणों के मुताबिक कई चीजें थीं. एक तो हाँ, आर्थिक सुरक्षा की बहुत गहरी इच्छा, बचपन की गरीबी भूली नहीं थी. दूसरी, तारीफ और अपनेपन की जरूरत. वो थे तो परफॉर्मर ही ना, लोगों का प्यार चाहिए था. लिवी और बेटियों का प्यार उनके लिए बहुत मायने रखता था. और तीसरी चीज थी एक नैतिक मिशन. उन्हें लगता था कि उनके पास आवाज है, तो उसका इस्तेमाल सच बोलने,
पाखंड का पर्दाफाश करने और कमजोरों की आवाज बनने के लिए होना चाहिए। यही जज्बा उन्हें साम्राज्यवाद विरोधी बनाया, नागरिक अधिकारों का समर्थक बनाया।
और मुश्किलों से कैसे निपटते थे?
उनका तरीका अनोखा था। वो अक्सर अपने दर्द को, अपने गुस्से को कला में बदल देते थे, व्यंग्य में। हास्य उनके लिए एक ढाल भी था, हथियार भी, और उनमें लचीलापन बहुत था, रेजिलियंस जिसे कहते हैं। दिवालियापन से उभरना इसका सबूत है।
लेकिन कमजोरियां भी थीं।
बिल्कुल। वो कोई संत नहीं थे। अहंकार था, गुस्सा था, और वो जोखिम भरे निवेश करने की आदत थी, उसने उन्हें कई बार मुसीबत में डाला। वो बहुत मानवीय थे अपनी सारी कमियों और खूबियों के साथ।
चलिए अब उन तीन खास मोड़ों की बात करते हैं जिन्होंने उनकी जिंदगी को असल में बदल दिया। पहला तो शायद भाई हेनरी की मौत ही होगी, है ना, 1858 में।
हाँ, वो पहला बड़ा आघात था। सैमुअल ने ही हेनरी को उस स्टीमबोट पेंसिल्वेनिया पर नौकरी करने के लिए मनाया था, और फिर वो हादसा हुआ, बॉयलर फटा, हेनरी बुरी तरह जला और मर गया।
और सैमुअल खुद को जिम्मेदार मानते रहे।
उलझन है कि आप अच्छा करना चाहते हैं और बुरा हो जाता है, ये उनके लेखन में बार बार आती है, खासकर हक और जिम के रिश्ते में। ये उनके जवानी के आशावाद पर पहली बड़ी चोट थी।
दूसरा बड़ा मोड़ आपने बताया दीन एसेंस अब्रॉड की सफलता और लिवी से शादी 1869-70।
हाँ, ये दोनों चीजें लगभग एक साथ हुई और इन्होंने ट्वेन को पूरी तरह बदल दिया। वो अब सिर्फ एक मजेदार लेखक नहीं थे, वो एक राष्ट्रीय हस्ती बन गए थे, एक सम्मानित लेखक, एक पारिवारिक आदमी।
लिवी का क्या असर रहा?
लिवी उनके जीवन में स्थिरता लाई, सामाजिक सम्मान लाई। वो उनकी बौद्धिक साथी थी, उनकी सबसे भरोसेमंद आलोचक और संपादक। इस रिश्ते ने उन्हें पूर्वी साहित्यिक जगत से जोड़ा।
लेकिन क्या इससे उनकी अपनी शैली पर कोई असर पड़ा?
हाँ, चेरेनो ये भी दिखाते हैं कि इससे एक तनाव भी पैदा हुआ, उनकी अपनी स्वाभाविक थोड़ी अखड़ शैली और संभ्रांत समाज में फिट होने की कोशिश। लेकिन शायद इसी तनाव ने उनकी कला को और निखारा। ये उनके जीवन का सबसे सुनहरा दौर था।
और फिर तीसरा वो भयानक दशक 1890 का, दिवालियापन, वर्ल्ड टूर और फिर बेटी सूजी की मौत 1894-96 के आसपास।
ये उनके जीवन की सबसे क्रूर और शायद सबसे निर्णायक त्रासदी थी। एक तो वो दिवालिया हो चुके थे, अपनी इज्जत बचाने के लिए दुनिया भर में घूम रहे थे। और तभी इंग्लैंड में उन्हें खबर मिलती है कि उनकी सबसे प्यारी बेटी सूजी मेनिनजाइटिस से मर गई, और वो उससे हजारों मील दूर थे।
ये तो सोचकर ही सिहरन होती है।
बिल्कुल। इस घटना ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। हार्टफोर्ड का वो घर जो उनकी खुशियों का प्रतीक था, वो अब दर्द की याद बन गया। वो उसमें फिर कभी नहीं रह पाए। चेरनो मानते हैं कि इस घटना ने उनके नजरिए को हमेशा के लिए निराशावादी बना दिया। हाँ, दिवालियापन से उभरकर उन्होंने सार्वजनिक सम्मान वापस पा लिया, पर सूजी की मौत का जख्म कभी नहीं भरा।
तो मार्क ट्वेन की इस पूरी कहानी से इतनी शोहरत, इतना दर्द, इतना हास्य, इतनी निराशा, आज हम क्या सीख सकते हैं?
कई चीजें हैं। पहली तो यही कि मुश्किलों को अपने दर्द को कला में कैसे बदला जाए। उन्होंने अपनी नाकामियों, अपने नुकसान, अपने गुस्से को कहानियों में, व्यंग्य में बदल दिया। वो आज भी हमें छूती हैं। एडवर्सिटी को आर्ट बनाना,
ये बहुत बड़ी बात है।
दूसरी बात, मुश्किल हालात में भी ईमानदारी बनाए रखना, जैसे उन्होंने कर्ज चुकाया। तीसरी, सत्ता पर, पाखंड पर सवाल उठाना, लेकिन इंसानी गरिमा का सम्मान करते हुए।
उनकी आलोचना तीखी होती थी पर व्यक्तिगत कम।
हाँ, ज्यादातर व्यवस्था पर होती थी। और चौथी बात, जीवन की जटिलताओं को स्वीकारना। उनकी महान रचनाएं आसान जवाब नहीं देती, वो हमें मुश्किल सवालों से रूबरू कराती हैं, दिखाती हैं कि दुनिया सीधी सपाट नहीं है।
और हास्य का इस्तेमाल।
बिल्कुल। हास्य सिर्फ हंसाने के लिए नहीं, सच कहने का, मुश्किलों से लड़ने का हथियार भी हो सकता है। और उनका अपना नैतिक विकास, खासकर नस्ल के मुद्दे पर उनकी सोच का बदलना, ये भी दिखाता है कि इंसान बदल सकता है, सीख सकता है।
भावनात्मक अंतर्दृष्टि। मेरे लिए सबसे मार्मिक बात यह है कि कैसे उन्होंने गहरे निजी दुख को, जैसे बेटी सूजी की मौत के दर्द को, कला में बदला। ये दिखाता है कि इंसान दुख सहते हुए भी निराशा में डूबे बिना उसे एक सार्वभौमिक अनुभव बना सकता है। ये मानवीय लचीलेपन की, रेजिलियंस की कहानी है। एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि। बौद्धिक स्तर पर देखें तो उनका सबसे बड़ा योगदान था अमेरिकी साहित्य को उसकी अपनी आवाज देना, आम बोलचाल की भाषा को साहित्यिक बनाना, और हास्य को गंभीर सामाजिक आलोचना का माध्यम बनाना। हकलबरी फिन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि और सबसे व्यवहारिक सबक शायद ये है कि असफलता का सामना, या तक कि दिवालियापन जैसे सार्वजनिक अपमान का भी, ईमानदारी और हिम्मत से किया जा सकता है। और ये आपके चरित्र को कमजोर नहीं, मजबूत बनाता है। साथ ही
जिंदगी भर अपनी सोच को, अपने नैतिक नजरिए को विकसित करने की गुंजाइश रखना, जैसे ट्वेन ने नस्ली मुद्दों पर किया।
और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती हूँ। ट्वेन का मानना था कि इंसान काफी हद तक परिस्थितियों और स्वभाव की मशीन है, जिसमें शायद सच्ची आजाद मर्जी नहीं है। फिर भी उन्होंने न्याय के लिए इतनी लड़ाई लड़ी। हम इस नियतिवादी सोच को नैतिक जिम्मेदारी लेने और बदलाव लाने की अपनी इच्छा के साथ कैसे मिला सकते हैं? सोचने वाली बात है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ, जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।